आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।
कभी वो घर की चौखट तक सीमित थीं, कभी उनके सपनों को समाज की दीवारों ने रोक लिया, लेकिन हर खामोशी के पीछे एक आवाज थी, हर संघर्ष के पीछे एक हौसला था। आज वही आवाज संसद के दरवाजों तक पहुंच चुकी है, आज वही हौसला कानून बनने की राह पर है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत, जहां अधिकार सिर्फ शब्द नहीं हकीकत बनने जा रहे हैं। आज से शुरू हुआ संसद का विशेष सत्र, जहां इतिहास लिखा जा रहा है, और उस इतिहास के केंद्र में है भारत की नारी। आइए इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं और समझते हैं उस बदलाव को जो आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करेगा। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरी को एंकर सोनू सूद।
धन्यवाद आनंद। As you said, you know, rightly, it's a very, very historic day for the women of India. You know, today is the day when Nari Shakti Vandan Adhiniyam, that is being discussed in the Parliament for passage. It's already been passed in 2023, but now the amendment bills are being, you know, they are being discussed and they will be facilitated so that this, you know, Adhiniyam can actually see the light of day and we can actually see 33% reservation taking place in the Lok Sabha and the state legislative assemblies. And to discuss this momentous occasion, we have with us a very special guest, Supreme Court advocate and social activist Farha Faiz. She's with us in the studios. Farha ji, warm welcome to you on Akashvani.
थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मुझे अपने शो का हिस्सा बनाने के लिए। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत और आकाशवाणी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ और मुझे अपनी बात को रखने के लिए और अपने चैनल के माध्यम से आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं तक एक मैसेज देने का कि ये अब हमारा वक्त आ चुका है।
So that's very beautifully put, Faraji. Nari Shakti Vandan Adhiniyam 2023. What do these 3 days really mean, you know, for making this a reality for the empowerment of Indian women?
देखिए, ये वाकई में ये जो 3 दिन है ये ऐतिहासिक दिन है हर एक नारी के लिए, जो जरा सी भी अग्रणी है या जो एक शैल से बाहर आना चाह रही है तो उसके लिए ये सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। अगर ये एक्ट बन जाता है, जिसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये एक्ट बन पाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन इस बिल को लेकर के आ रहा है और उसमें कितनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर है, जो अब तक के नेताओं में देखने को नहीं मिली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लेकर के आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको लागू करा करके ही रहेंगे। तो मुझे मतलब अपने आप में एक गौरव की अनुभूति होती है, इसके नाम से एक गौरव का एहसास होता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी की शक्ति की वंदना की जा रही है। तो ये हम लोगों के लिए, नारियों के लिए बहुत ही ज्यादा जो है गौरव का क्षण है।
जी हाँ, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस विशेष सत्र में 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। पहला है संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, जिसमें लोकसभा की सीटें 850 करने का प्रस्ताव है, राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं। दूसरा है परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। ये विधेयक पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण का बिल लागू हो सके। फरा जी, आपसे चर्चा हो रही है, महिलाओं पर एक जिम्मेदारी भी आने वाली है, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि देश का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि उन्हें राजनीति में एक विशेष दर्जा दिया जाए, लेकिन वो विशेष तो शुरू से हैं, चाहे वो मां के स्वरूप में, बहन के स्वरूप में या अलग अलग स्वरूप में, लेकिन इस कानून के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है।
बिल्कुल, नारी तो वंदनीय तो है ही, लेकिन वो अभी तक अपने परिवार तक सीमित थी। लेकिन जैसे अभी हम बात करें अगर पंचायती राज की, तो वहां एक जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो नारी जो है अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है और उस अपनी जिम्मेदारियों को आगे लेकर के चल रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें नारी शक्ति की, तो जो महिलाएं हैं वो इस देश का 50% आबादी मानी जाती है, लेकिन फिर भी उसको 33% आरक्षण दिया जा रहा है। बात होनी चाहिए थी 50% आरक्षण की, लेकिन अगर 33% आरक्षण भी मिल जाए तो गनीमत है। यहां तो 33% आरक्षण के लिए भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, और जो अपना एंटी वुमेन जो फेस है वो जो शुरू से वो उनका रहा है वो किस तरह से मुखर होकर के अब इस चीज को लेकर के आ रही हैं, और उनके पास मतलब कोई इस तरह से बहुत ज्यादा मीनिंगफुल कोई इश्यू नहीं है इसको अपोज करने का, सिवाय एक इश्यू के, डिलिमिटेशन के, इसका जो परिसीमन है वो ऐसे होना चाहिए, सेंसस जो 2011 का है वो क्यों यूज किया जा रहा है, अभी ऐसी क्या जल्दी है। अगर हम बात करें एमके स्टालिन की, तो एमके स्टालिन वो शख्स है जिन्होंने 2023 में ये कहा था कि इसको इतना डिले क्यों किया जा रहा है, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो जाना चाहिए, बाद में क्यों इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आज वही एमके स्टालिन क्या कर रहे हैं, इसकी प्रतियत फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, काले झंडे लगाने का आह्वान कर रहे हैं। तो व्हाट इज दैट, ये मतलब ये ड्रामा, ये नौटंकी क्यों, जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है तो ये सब चीजें क्यों सामने आती है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो यही कांग्रेस पार्टी के पास में बार बार से इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आई हैं, चाहे तो वो 1986 की हम बात करें, जब शाहबानों ने अपना जो केस लड़ा था मेंटेनेंस का, और सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में, मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस के लिए कहा था कि हाँ भाई इनको भी जो है मेंटेनेंस मिलना चाहिए, और जब ये एक्ट फ्रेम होने लगा तो सदन में जो है किस तरह का वो एक्ट बना है, आज तक उसमें एक भी महिला ने अपने मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल नहीं किया है। किसी भी महिला ने अगर मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल किया है तो वो 125 सीआरपीसी, जो अब 144 बीएनएसएस कहलाता है, उसमें फाइल किया है। और उसकी मेन वजह ये है कि वो जो एक्ट फ्रेम हुआ था, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में फ्रेम किया गया था मुस्लिम महिलाओं के मेंटेनेंस के लिए, वो सिर्फ 3 महीने के मेंटेनेंस का प्रोविजन करता था। आज ये लेकिन महिला को तो मेंटेनेंस पूरे जीवन के लिए चाहिए, अगर उसको तलाक हो जाता है या वो अलग हो जाती है, तो बाकी 3 महीने के बाद में फिर उसके खर्चे का कौन जिम्मेदार है। अगर हम उसे 86 के एक्ट की बात करें तो उसमें प्रोविजन है कि अगर आपका हस्बैंड तो सिर्फ 3 महीने तक देगा, उसके बाद आपके घर वाले देंगे, घर वाले नहीं देंगे तो आप रिश्तेदार कुनबे वालों के पास जाइए, वो नहीं देगा वक्फ बोर्ड के पास जाइए, डीएम निर्धारण करेगा, ये करेगा। मतलब आपने एक औरत को भिखारी बना दिया, उसके हाथ में कटोरा दे दिया, जाइए अब आप भीख मांगते रहिए। तो वो क्यों भीख मांगे, तो वो बजाय भीख मांगने के और उस एक्ट में अपना मेंटेनेंस डिमांड करने के, वो हमेशा से उसने 125 सीआरपीसी में अपने मेंटेनेंस को क्लेम किया है। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बार जो चांस मिला था कांग्रेस को, वो मिला था ट्रिपल तलाक के टाइम में, और पार्टीज को भी ट्रिपल तलाक के टाइम में ये चांस मिला कि वो अपना जो चेहरा है वो एंटी वीमेन ना दिखा करके महिलाओं के हित में दिखाएं, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सका। जो उनकी रणनीति है, जो उनकी नीतियां हैं, वो हमेशा से महिला विरोधी रही हैं, और वो मुखर होकर के महिलाओं के अगेंस्ट आए हैं और उन्होंने अपोज किया उस बिल को। थैंक्स टू बीजेपी गवर्नमेंट, थैंक्स टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, कि उन्होंने इस जजमेंट को शाबानों के जैसे पलटने नहीं दिया और एक एक्ट फ्रेम किया, जिसमें आज वो जो फतवा फैक्ट्री फतवे देकर के ये कहती थी कि एक बार में अगर तलाक 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 कह दिया जाएगा तो तलाक वैलिड हो जाएगी, आज वो फतवा फैक्ट्री बंद हो चुकी है, आज वो फतवे नहीं देती।
आपने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री ये लाए हैं अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और आज उन्होंने जो संबोधन दिया लोकसभा को, उसमें भी बहुत कहें कि भावनात्मक एक संबोधन था। आइए सुनते हैं उन्होंने कैसे बताया कि सभी सांसद भाग्यवान हैं जो उन्हें ये शुभ अवसर मिला है इस अधिनियम को उस पर चर्चा करने का, उसे पारित करने का।
जी,
हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिल करके देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी उसके रूप स्वरूप को तो तय करने ही करने वाला है, लेकिन ये देश की दिशा और दशा भी तय करने वाला है।
फरहा जी, कितनी खूबसूरती से प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है। वो ये नहीं कह रहे कि हम नारियों को सौभाग्य दे रहे हैं या नारियों को हम कुछ दे रहे हैं। नारी शक्ति का पूरा सम्मान करते हुए उनका ये जो एक दृष्टिकोण है कि सबको साथ में लेके चलना, ये तो एक तो सब सांसदों को साथ में लेके चलना बोलना कि हम सबका सौभाग्य है, और साथ ही साथ जो एक राष्ट्र निर्माण है उसमें नारियों की भूमिका का जो मूल्य है उसको इस तरह से अंकित करना, ये कितना महत्वपूर्ण है।
देखिए, ये तो है ही जो महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो नारी का अगर ये इस तरह से हो जाता है तो वो देश की दिशा और दशा तय करेगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर 50% महिलाओं की जो आबादी है अगर वो विकसित नहीं है तो हम अपने आप को विकसित भारत नहीं कह सकते। किसी भी समाज का जो विकास है या वो विकसित है या नहीं है ये इस पर डिपेंड करता है कि जो वहां की महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर वहां की महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही हैं, आज भी दुख झेल रही हैं, आज भी यातनाएं झेल रही हैं, आज भी जो है कुप्रथाओं के शिकार हैं, तो वो विकसित देश नहीं हो सकता। तो विकसित होने के लिए ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति का जो है वो विकास होना चाहिए। जब महिलाएं 50% हैं तो हम 50% आबादी के विकास को मार्जिन पर नहीं छोड़ सकते। तो मोदी जी ने तो बिल्कुल बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि हमारे ये सौभाग्य की बात है और हम लोगों के लिए ये भी गर्व की बात है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो इतना स्ट्रांग विल पावर रखता है कि उन्होंने अपने टेन्योर में एक नहीं एकदम से इतने सारे ताबड़तोड़ जो है वो चेंजेस लाए हैं। चाहे तो वो ट्रिपल तलाक का केस हुआ या फिर धारा 370 और भी तमाम इस तरह की चीजें हैं।
जी हाँ, बिल्कुल, आपने विकसित भारत की बात की और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा भी कि विकसित भारत का अर्थ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं है, विकसित भारत का अर्थ ये भी है कि देश की आधी आबादी यानी नारी शक्ति को नीति निर्धारण में हिस्सेदारी भी मिले।
21वीं सदी में भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी आज भारत की स्वीकृति हम सब महसूस कर रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास आया है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है।
फरहा जी, आप समाज सेविका भी हैं और तीन तलाक को लेकर काफी मुखर भी रहीं, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो कोशिश ये होती है कि सारे बॉक्सेस टिक हो जाएं। उसमें तीन तलाक का भी मुद्दा था। आपका अनुभव कोई निजी रहा हो बतौर अधिवक्ता या बतौर महिला कि तीन तलाक का कानून जब ये सरकार लेकर आई उसके बाद महिलाओं के जीवन में जमीनी स्तर पर किस तरह का आपने बदलाव देखा?
देखिए, मैं एक बहुत ही ग्राउंड लेवल की महिला का यहां पर एक उदाहरण दूंगी। एक गांव है उगराहू, वहां की एक महिला है खुर्शीदा, और उसकी एज होगी लगभग ऐसे 58 इयर्स की, वो पोता पोती वाली नाती नातिन वाली महिला है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। उसका हस्बैंड उसकी मतलब बिजली के तारों तक से पिटाई करता था और इतना ज्यादा वो परेशान थी। जब वो थाने एक बार गई तो वहां से इंस्पेक्टर ने उसको काउंसलिंग के लिए मेरे पास भेजा। मैंने उसको समझाया कि इस तरह से जो तुम्हें तलाक दे दी गई है, तलाक 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 कह करके, वो तलाक वैलिड नहीं है, न शरिया के हिसाब से न कानून के हिसाब से। तब तक ये एक्ट फ्रेम नहीं हो पाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था। तो तब जो है मैंने उसको समझाया, शरिया के हिसाब से भी समझाया, वो सब कुछ समझाया, उसकी समझ में आ गया कि हाँ मेरी तलाक नहीं हुई है। वो मेरे से फुल्ली कन्विंस्ड होकर के वापस से घर गई। और लेकिन जैसे वो गांव में पहुंची तो वहां के जो पेश इमाम थे उन्होंने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, तलाक तो हो चुका है, अब जो है तो तुम पर जो है वो इद्दत वाजिब हो गई, इद्दत करो। अब वो इद्दत करे तो उसके तो सारे राइट्स खत्म, वो तो तलाक उसका डेफिनेटली हो ही गया। अब जब ये एक्ट फ्रेम हो जाता है, उस दिन मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा खुर्शीदा आज तो एक्ट बन गया बाकायदा, देखो अब तुम्हारी तलाक नहीं हुई, अभी कानून भी आ गया है और तुम्हें ये राइट मिल गया है कि आप इसकी FIR भी करा सकती हो। और कहां हो तुम? तो उसने कहा मैडम मैं तो इद्दत कर रही। तो मैंने कहा इद्दत अगर कर रही हो तो ये तो बहुत गलत कर रही। उसने कहा कि नहीं, हाफिज जी ने कह दिया कि इद्दत वाजिब हो गई, अब आप जो है वो इद्दत करोगी, नहीं तो सोशल बायकॉट हो जाएगा, आप गांव से बाहर जाओगी। तो मैंने कहा गांव से बाहर तो वैसे भी जाओगी, अगर आप इद्दत कर लोगी आप उसकी वाइफ नहीं रहोगी और आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा जहां इद्दत कर रही, तो इसलिए इद्दत की तो कोई सेंस नहीं बनती। उस लेडी की समझ में आया, वो इद्दत से बाहर आई, बाहर आकर के उसने FIR लिखाई, ना सिर्फ अपने हस्बैंड और ससुराल वालों की जो इसको इस तरह से टॉर्चर कर रहे थे, बल्कि मौलाना के खिलाफ भी FIR कराई, उसको भी नेम्ड किया जिसने ये वर्बल उसको टॉर्चर किया था कि नहीं अब तुम्हारे पर इद्दत वाजिब हो गई, तुम्हारा तलाक हो गया, अब तुम इसकी बीवी नहीं रही। तो इस तरह का जो है वो चेंज आ रहा है। वो एक इलिटरेट महिला थी और आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके ससुराल वालों ने उस पर 17 मुकदमे लगाए उसके बाद में, लेकिन उसने 17 मुकदमों को फाइट किया, आज भी वो फाइट कर रही है। कुछ मुकदमे का डिस्पोजल हो चुका है, कुछ डिस्पोज ऑफ नहीं हो सके हैं। तो
आपसे
आपको
बीच में रखूंगा, बहुत सारे आकाशवाणी के श्रोता इद्दत शब्द का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, थोड़ा उन्हें समझा दें।
इद्दत क्या होता है कि जैसे अगर किसी को तलाक दे दिया जाए लेडी को, तो उसे 3 महीना 10 दिन का जो पीरियड है वो एकांत में गुजारना होता है और वो बाहर नहीं आ सकती या उस तरह का कुछ इंट्रेक्शन नहीं कर सकती, कुछ सर्कमस्टांसिस को छोड़ करके, अगर जैसे उसको जरूरी है तो वो वैसे जॉब पर भी जा सकती है, लेकिन अमूमन वो उसको एकांत में रहना होता है। इसी तरह से अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो उसे 4 महीने 10 दिन का जो है वो टाइम पीरियड गुजारना पड़ता है। इसी तरह से उसकी बहुत सारी वजूहतें, लंबा टॉपिक है, लेकिन मेन ये है कि ये पीरियड उसको एकांत में गुजारना है और उसके बाद में ही उसका वो डाइवोर्स जो है वो फाइनल माना जाता है। तो ये इस तरह से खुर्शीदा ने कहा कि अगर मैंने उस खुर्शीदा को कहा कि अगर आपने इद्दत कर ली तो आप उसकी वाइफ नहीं रहोगी, आपके सारे राइट्स खत्म हो जाएंगे।
तो संसद में आज का जो घटनाक्रम है उस पर प्रकाश डालने के लिए वहां हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आकाशवाणी के पार्लियामेंट में मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह, उनके पास चलते हैं। भूपेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी
भूपेंद्र जी बताएं, आप संसद में हैं तो अभी ताजा स्थिति क्या है, या अगर आप हमें संक्षेप में पूरे दिन का क्या घटनाक्रम रहा उसके बारे में बता सकें, जो की हाइलाइट्स हैं?
जी, आज संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ। इस विशेष सत्र का मकसद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को सुगम बनाना और लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 सीटों के आरक्षण के प्रावधानों को लागू करना है। सरकार की ओर से लोकसभा में 3 विधेयक लाए गए हैं, जिनमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इन तीनों विधेयकों की बात करें तो इनका उद्देश्य लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। 2023 में संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम पास किया गया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, और इसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में लगभग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। लोकसभा में दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को सदन के पटल पर रखा। विपक्ष ने इन विधेयकों को सदन में रखे जाने का विरोध किया। उनका कहना था कि ये विधेयक देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने के इरादे से लाए गए हैं। वहीं विपक्ष के कुछ सांसदों ने जल्दबाजी में इन विधेयकों को लाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। उनकी ये भी मांग थी कि लोकसभा की मौजूदा सीटों में ही महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और विपक्ष के सांसदों ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर इन विधेयकों को लागू क्यों करना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयकों के प्रस्तुतीकरण पर सवाल खड़े करने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और जोर देकर कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय पहले ही लिया है।
जी भूपेंद्र,
विधेयकों को पेश करते हुए कानून मंत्री ने दलील दी कि शुरू हो चुकी जनगणना के परिणाम 2027-28 से पहले आने की संभावना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मुहैया कराने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आवंटन के लिए 2011 की जनगणना को उपयोग किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब देश की 50% आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना।
जी भूपेंद्र, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये अवसर मिल रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक अवसर पर संसद का माहौल क्या था, किस तरह का उत्साह सत्ता पक्ष की तरफ से देखने को मिला आपको और विपक्ष की तरफ से, चूंकि वो भी चाहते हैं कि बिल पास हो लेकिन अपने राजनीतिक उनके फायदे नुकसान के कारण वो इसका विरोध कर रहे हैं, कैसा माहौल था?
जी, अगर माहौल की बात करें संसद भवन में तो जो है कि सांसदों में काफी उत्साह था। विपक्ष के सांसदों की बात करें तो उन्होंने भी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जो है कि अपनी सहमति दर्ज की। हालांकि कुछ बिंदुओं को लेकर उन्होंने अपने जो है कि सवाल खड़े किए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो है कि विपक्षी दलों से अपने भाषण के दौरान ये अपील की कि वे इस ऐतिहासिक विधेयक को राजनीतिक रंग दें, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अब तक इस विधेयक का यानी कि जो लोग अब इस विधेयक का विरोध करेंगे उन्हें भविष्य में इसके परिणाम भुगतने होंगे। जी
जी भूपेंद्र, और चलते चलते थोड़ा राजनीतिक पहलू बता दीजिए, चूंकि आप बहुत समय से कवर कर रहे हैं, इससे भारतीय राजनीति पर आने वाले वर्षों में किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं?
जी, अगर इसके प्रभाव की बात करें तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो है कि अगर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है अगर प्रचार यानी कि आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
ठीक है भूपेंद्र, आगे आपसे जानकारी जरूर लेते रहेंगे इस विषय पर।
इस बीच मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब महिलाएं संसद और विधानसभाओं में अधिक संख्या में प्रतिनिधित्व करेंगी तब उनकी समस्याएं, अनुभव और दृष्टिकोण जो उनके खुद के हैं वो नीति निर्माण में अधिक प्रभावी रूप से परिलक्षित होंगे। महिलाओं की भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर आपको लगता है कि अधिक संवेदनशील और व्यावहारिक नीतियां बन सके?
जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी महिलाएं जो हैं इन सारे जितने भी आपने मुद्दे गिनाए हैं इनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको उठाती रही हैं टाइम जैसे जैसे भी आया, क्योंकि घर परिवार से जुड़ी हुई हैं वो, ये सारे मुद्दे जो है एजुकेशन से लेकर के और ये सब विकास से लेकर के वो कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं महिलाओं के जीवन को, तो उनके लिए हमेशा से वो संघर्ष रहा है, उनका प्रयासरत रही है। आज अगर उसको ये एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाती है और इन महिलाओं में से महिलाएं चुन करके जनप्रतिनिधि के रूप में जो है सदन में पहुंच जाती हैं तो वो लॉ मेकर होंगी, वो लॉज बना पाएंगी, उन्हें हर तकलीफ से जुड़े बारीकियों का पता होगा कि कहां कहां जो है वो मेरा जूता मुझे काट रहा है, तो वो उसकी रेमेडीज को ढूंढने में ज्यादा बेटर जो है वो प्रोविजंस लाने के लिए उसमें अपना योगदान दे सकेंगी। तो मेरे ख्याल में तो अगर एक लॉ मेकर लेडी होती है और या उसका उस टीम में एक योगदान रहता है तो वो जो लॉ फ्रेम होगा उसमें ज्यादा संवेदना होगी और बहुत जरूरी इसमें एक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि महिलाएं जो है वो गोलमोल काम नहीं करती, वो बहुत साफ सुथरा काम करती हैं, ये महिलाओं का स्वभाव है, और संवेदनाओं से परे होकर के काम नहीं करती, किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ती, तो
एक संतुलन
लेकर के चलती,
कंधे से कंधा एक्चुअली मिला के हम कह सकते हैं कि महिला पुरुष,
क्योंकि वो परिवार में हर किसी का ध्यान रख करके तब आगे बढ़ती है, परिवार को लेकर के चलती है, तो वही जो उसकी नेचर है वो नेचर आप उसको छीन तो सकते नहीं कि अगर वो घर में है तो उसकी ये नेचर रहेगी, अगर वो सदन में है तो उसकी नेचर बदल जाएगी, वो तो उसके नेचर में है ही, व्यवहार में है ही, तो वो कहीं भी हो तो वो उस व्यवहार से परे नहीं जा सकती, तो वो जो एक्ट फ्रेम होंगे या जो लॉ बनेंगे या जो समस्याएं वहां रखी जाएंगी तो जाहिर बात है कि उसमें जो है वो बहुत चेंज रहेगा।
जी हाँ, बहुत बदलाव रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज संसद में संबोधन दिया उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि हम उस युग में हैं जहां महिला सबसे ज्यादा अपना भविष्य उज्जवल देख रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
बिल जरूर विपक्ष को साथ में आके इस संवैधानिक संशोधन को पारित करना चाहिए, क्योंकि आप कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का एक स्वर्णिम युग हमारे देश में शुरू होने वाला है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बिल को 2023 में पारित कर दिया गया था। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, तो अगर बिल को उन्होंने पारित कर दिया तो अब इम्प्लीमेंटेशन करने में वो अड़चन क्यों लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष का इतिहास रहा है कि जब जब महिला सशक्तिकरण के महिला आरक्षण का बिल आया है तो वो कोई ना कोई अड़चन ला करके इस बिल को पारित करने से रोक दे रहे हैं, तो अब उनके पास भी एक सुनहरा अवसर है कि इतिहास की अपनी जो गलती है उसको वो सुधार सके और महिलाओं को उनका अधिकार वापस दे सके। अगर वो नहीं देते हैं तो ये महिलाओं के अधिकार का विरोध होगा और कहीं ना कहीं इसको पूरा देश उसी नजर से देखेगा। हमारे संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगातार इस बात के पक्षधर थे कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसमें क्या खराबी है। एक सांसद के पास 20 लाख 25 लाख वोटर होते हैं, प्रतिनिधित्व करना मुश्किल होते जा रहा है। 800 से सीट अगर बढ़ जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही कहते कि नहीं, डिलिमिटेशन साल दर साल हम लोग को इसको रिव्यू करते हुए डिलिमिटेशन करना चाहिए। ये गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारा सरकार का सुनिश्चित करता है। तो अब ये खाली महिला सशक्तिकरण में अड़चन लगाना चाहते हैं तो एक बहाना लेके आगे कि डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। डिलिमिटेशन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये देश के हित में है, जनता के हित में और गुड गवर्नेंस के हित में है तो डिलिमिटेशन क्यों नहीं होना चाहिए?
फरा जी, जी हाँ, आपकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, हमने आपसे बतौर अधिवक्ता भी सवाल किए, ट्रिपल तलाक से जुड़े भी सवाल किए। समाज सेविका के तौर पर एक प्रश्न बनता है कि 2014 से पहले जो इस देश में योजनाएं बनती थी वो महिलाओं के लिए सोचा जाता था, उसके बाद विमेन सेंट्रिक योजनाएं बनने लगी, लेकिन ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम से ऐसा लग रहा है कि विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ ये सरकार सोच रही है। बतौर समाज सेवी आपने कितना बदलाव महसूस किया 2014 के बाद इस दिशा में?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब महिला, अगर ये इस तरह से ये एक कानून बन जाता है और जो सोसाइटी है विमेन लेड सोसाइटी बन जाती है तो उससे क्या होगा, महिलाओं का संघर्ष आधा रह जाएगा। आज जैसे बतौर समाज सेवी मेरे कोई शूज हैं और मैं उसको उठाती हूं, उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, या तो कोर्ट के माध्यम से जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, या फिर जो है किसी ना किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो है वो अपनी बात बताएंगे, अपनी व्यथा बताएंगे, तो फिर वो सदन में उस चीज को क्वेश्चन को रेज करे ना करे ये उसका अपना डिसीजन होगा। लेकिन अगर मुझे एक प्लेस मिल जाएगा, मतलब नारी को प्लेस मिल जाएगा, तो क्या होगा कि वो समस्याओं को हम अपने तौर से और अपने मुंह से अपनी समस्याओं को वहां रख सकेंगे और एक नीति निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। इससे एक साफ सुथरा एनवायरमेंट भी आएगा, इससे जो है महिलाओं को एक राहत भी मिलेगी और कहीं ना कहीं जैसे एक ब्लेम हो जाता है ना कि अरे ये तो वो लोग पुरुष ने रख दिया ये सब चीज, उन्हें क्या पता, तो जब महिलाएं रखेंगी तो वो ये सब चीजें नहीं होंगी और विपक्ष को इतना ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। उसको जो है ये सब करके जो एंटी वुमेन फेस वो अपना फिर दोबारा से दिखा रहे हैं, वो ये सब नहीं दिखाना चाहिए। मैंने जब ये ट्रिपल तलाक का जो डिबेट्स चल रही थी उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि भाई इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो ट्रिपल तलाक आया, 370 हटा, अब जो है विमेन रिजर्वेशन भी ला रहा है और मुझे उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ ही जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं
जी। बिल्कुल, परिसीमन को लेकर बहुत ऑब्जेक्शंस रेज की ऑपोजिशन ने कि भेदभाव होगा विशेषकर दक्षिण के राज्यों के साथ। इसका खंडन करते हुए जो आंकड़े दिए और समझाया कि कैसे ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा, आइए सुनते हैं हमारे गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा।
एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो तीन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और दो कानून डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। माननीय, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। एक बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद, कर्नाटक की संख्या हो जा गई 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14, तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60, अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है, अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है।
सो फरहा जी, जो एक कह रहे थे ऑपोजिशन की जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां पर कम गति से पॉपुलेशन बढ़ी है और उसका उन्हें अब नुकसान होगा, तो ये बहुत ही एक क्लियर फॉर्मूला लगा है कि जो आपकी वेटेज है वो वही रहेगी, आपका जो प्रतिशत योगदान है सीटों का लोकसभा में राज्य का जो पहले था वो ही अब भी रहेगा इस बदलाव के बाद। ये कितना इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि इससे काफी हद तक शायद स्वीकृति बनने में फायदा होगा?
बिल्कुल, उन्हें परेशान जो वो हो रहे हैं उनकी ये परेशानी का समाधान है कि अगर संख्या बढ़ जाती है तो जो परसेंटेज था उनका वही परसेंटेज रहेगा, साथ में महिलाओं का जो नेतृत्व है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो उन्हें जो है उनका मकसद जो है वो इस प्रॉब्लम को लेकर के चलना नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है इसलिए वो परेशान है, उनका मकसद है कि प्रॉब्लम क्रिएट करना है। अब किस फॉर्म में क्रिएट करें, किन इश्यूज को प्रॉब्लम बनाएं, बस सिर्फ बात यही है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है।
सो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये तीन दशक से इस अधिनियम को बात हुई थी लेकिन तीन दशक तक कुछ नहीं हुआ, अब आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है और हम आशा कर सकते हैं कि 2029 की जो इलेक्शंस होंगी उसमें ये 33% रिजर्वेशन हम एक्चुअली देखेंगे ऑन द ग्राउंड?
बिल्कुल, मुझे तो 100% उम्मीद है, क्योंकि डिपेंड करता है कौन आदमी इस बिल को लेकर के आ रहा है। तो अपने प्रधानमंत्री पे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वो इस बिल को लेकर के आएंगे, महिलाओं का जो नेतृत्व है वो बढ़ेगा वहां पर। और लेकिन वो है ना कि बहुत कठिन है, डगर पनघट की एक लाइन है कव्वाली की, तो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना आसान तो नहीं है, लेकिन वो शख्स इस तरह के हैं कि उन्होंने जो ठान लिया तो वो उसे करना ही है। अब कौन जानता था कि 370 हट जाएगी, कौन जानता था कि मुस्लिम महिलाओं को जो है उनके अधिकार इस तरह से दे दिए जाएंगे, कौन जानता था कि वक्फ बोर्ड में जो है वो महिलाओं की भागीदारी को भी बताया जाएगा। तो ये सब हुआ ना, तो जैसे वो हुआ ऐसे ये भी हो जाएगा।
जी हाँ, इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं लिखा जाता, इतिहास बदलाव की उन लहरों में लिखा जाता है जो समाज की सोच को बदल देती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं, ये उन अनगिनत आवाजों की गूंज है जो सालों से सुनी जाने का इंतजार कर रही थीं। ये उन सपनों की शुरुआत है जो अब सीमाओं में नहीं बंधेंगे। ये उस विश्वास की जीत है जो हर नारी अपने भीतर संजोए बैठी थी। आज संसद में जो शब्द गूंजे हैं वो आने वाले कल की तस्वीर बनेंगे, क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक कदम नहीं बढ़ता, पूरा समाज आगे बढ़ता है। इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फरा जी, आपका और सोनू सूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।